लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमने दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय की शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पेय स्वरूप देता है। हमने अपने विगत प्रसारण में पवित्र हृदय के विषय में विभिन्न संतों के विचारों की चर्चा की। उनके जीवन अनुभवों के सार की चर्चा करते हुए हम इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि ईश्वर के हृदय में आराम करना उनके लिए जीवन का स्रोत और शांति का कारण बनता है। श्रोताओ, आधुनिक समय में हमें संत फ्रांसिस डी सेल्स के महत्वपूर्ण कार्य का जिक्र करना जरूरी है। संत फ्रांसिस डी सेल्स ने निरंतर यीशु के खुले हृदय पर विचार मंथन किया, जो हमें उनमें निवास करने को निमंत्रण देता है, जहां हम उनके संग अपने व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध को पाते हैं, जो हमारे लिए उनके जीवन के रहस्य को प्रकाशित करता है। उनके लेखनों में कलिसिया के आचार्य संत ने कठोर नैतिकता और विविध धर्म निष्ठता का विरोध करते हुए इस बात के लिए आह्वान किया कि हम यीशु के हृदय उनकी कृपा के रहस्यमयी कार्य में पूर्ण विश्वास करें। हम इसे उनके पत्र में पाते हैं, जिसे उन्होंने संत जेने फ्रांसिस दे कांताल को लिखा। मैं इस बात को लेकर निश्चित हूँ कि हम अपने में नहीं, लेकिन ईश्वर की घायल बगल में सदैव के लिए निवास करेंगे, क्योंकि उनके सिवाय हम अपने में ना केवल कुछ कर सकेंगे, बल्कि यद्यपि हम कुछ करने के योग्य भी हों, तो भी हम में कार्य इच्छा के अभाव की अनुभूति होगी। श्रोताओ, फ्रांसिस डी सेल्स के लिए सच्ची भक्ति का आशय कोई अंधविश्वास या दिखावटी धर्म परायणता से नहीं था, क्योंकि इसमें हम एक व्यक्तिगत संबंध को पाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने में अद्वितीय रूप में तथा व्यक्तिगत ढंग से जाने जाते और यीशु के द्वारा प्रेम किए जाते हैं। यह अति आराध्य और प्रेम के योग्य हमारे स्वामी का हृदय, जो प्रेम से प्रज्वलित है, जो हमें प्रेम करता है, एक वह हृदय जहां हम सबों का नाम अंकित है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक गहरी सांत्वना का स्रोत है, जहां हम इस बात को जानते हैं कि हम सभी ईश्वर के द्वारा बहुत अधिक प्रेम किए जाते हैं, जो सदैव हमें अपने हृदय में वहन करते हैं। उन निशानियों के संग जहां हम यीशु के हृदय में अपने नामों को अंकित पाते हैं, संत फ्रांसिस ने यह व्यक्त करने का प्रयास किया कि हम में से प्रत्येक के लिए मसीह का प्रेम कोई अमूर्त और साधारण बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से व्यक्तिगत है, जो प्रत्येक विश्वासी को यह महसूस करने के योग्य बनाता है कि वह कौन है। वह अपने में जो कुछ भी है, वह उसी रूप में जाना जाता और उसका सम्मान किया जाता है। यह स्वर्ग कितना सुंदर है, जिसमें प्रभु सूर्य है और उनका वृक्ष स्थल प्रेम का झरना है जिससे धन्य लोग भी जी भरकर पीते हैं। हम में हर कोई वहां अपने नाम को अंकित देख सकते हैं, जो प्रेम के अक्षर से गढ़ा गया है, जिसे केवल सच्चा प्रेम पढ़ सकता है और जिसे सच्चे प्रेम ने अपने में अंकित किया है। फ्रांसिस डिसेल्स कहते हैं, प्रिय प्रभु और हमारे प्रिय जनों का क्या, प्यारी पुत्री का, निश्चित ही वे भी वहां होंगे, क्योंकि भले ही हमारे दिलों में प्रेम ना हो फिर भी उनमें प्रेम की इच्छा और प्रेम की शुरुआत होती है। श्रोताओं, फ्रांसिस डिसेल्स ने ख्रिस्त के प्रेम की इस अनुभूति को आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी पाया। वास्तव में यह विश्वास की बड़ी सच्चाइयों में से एक है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, वह तुम्हारी चिंता करते हैं और न केवल उतना ही बल्कि तुम्हारे सिर के सबसे छोटे केश की भी। यह हमारे लिए विश्वास का एक लेख है और हम में से हर कोई इसके बारे में संदेह नहीं कर सकता है। इसकी अभिव्यक्ति हमारे लिए इस रूप में होती है कि विश्वास अपने को पूरी तरह से यीशु ख्रिस्त के हृदय में छोड़ देना है, जहां हम अपने लिए आराम, सांत्वना और शक्ति को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, इस भांति मुक्तिदाता के आलिंगन और छाती से लगे रहना हमारे लिए कितना आनंददायक है। इसी प्रकार रहो प्यारी बेटी और एक अन्य छोटे बच्चे संत जॉन की तरह, जहां अन्य लोग प्रभु की मेज पर विभिन्न प्रकार के भोजन का स्वाद ले रहे हैं, अपने सिर, अपनी आत्मा और अपनी भावनाओं को पूर्ण विश्वास के साथ प्रेमी प्रभु की प्रेमपूर्ण छाती पर रखो। मुझे आशा है कि तुम कबूतर के दरार घोंसले में और हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता के बेधित बगल में आराम कर रही हो। ईश्वर कितने भले हैं मेरी प्यारी बेटी, उनका दिल कितना प्यारा है। हम यहीं रहें, हम उसी पवित्र निवास में पनाह लें। श्रोताओं, वहीं साधारण जीवन के पवित्रीकरण पर अपनी शिक्षा के प्रति वफादार संत फ्रांसिस डिसेल्स का प्रस्ताव है कि यह अनुभव हमारे दैनिक अस्तित्व की गतिविधियों, कार्य और उत्तरदायित्वों के बीच घटित होता है। आपने मुझसे पूछा, जो आत्माएं प्रार्थना में इस पवित्र सादगी की ओर, ईश्वर में इस पूर्ण समर्पण की ओर आकर्षित होती हैं, उन्हें अपने सभी कार्यों को किस तरह के आचरण से करना चाहिए। वे कहते हैं, मैं उत्तर दूंगा कि न केवल प्रार्थना में बल्कि दैनिक जीवन के आचरण में भी उन्हें हमेशा सादगी की भावना से आगे बढ़ना चाहिए। अपनी आत्मा, अपने कार्यों और अपनी उपलब्धियों को ईश्वरीय इच्छा के लिए पूरी तरह से त्याग देना चाहिए और ऐसा पूर्ण और निरपेक्ष विश्वास से चिन्हित प्रेम में करना चाहिए। उन्हें खुद को ईश्वरीय कृपा और उस शाश्वत प्रेम की देखभाल के लिए छोड़ देना चाहिए जो ईश्वरीय प्रधान उनके लिए महसूस करता है। यही कारण है जब हम आध्यात्मिक जीवन दर्शन की बातों को एक निशानी के द्वारा प्रस्तुत करने की चाह रखते हैं। संत फ्रांसिस डिसेल्स अंततः कहते हैं, मैंने शिक्षा दी है प्यारी माता, यदि आप सहमत हों तो हमें अपना प्रतीक चिन्ह दो बाणों से छेदा हुआ एक हृदय लेना चाहिए तथा पूरे हृदय को कांटों के मुकुट से लपेटना चाहिए। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। नए संत पापा के चुनाव के लिए सम्मेलन कॉन्क्लेव 7 मई को शुरू होगा, जो दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु 9 दिनों के मिसा समारोह के समापन के बाद होगा। यह तिथि सोमवार की सुबह वाटिकन में 5वीं आम सभा के लिए एकत्रित हुए लगभग 180 कार्डिनलों द्वारा तय की गई। यह सम्मेलन वाटिकन के सिस्टीन चैपल में होगा, जो उन दिनों आगंतुकों के लिए बंद रहेगा। कॉन्क्लेव से पहले एक पवित्र मिस्सा समारोह मनाया जाएगा, जिसमें सभी निर्वाचक कार्डिनल भाग लेंगे। दोपहर को निर्वाचक कार्डिनल एक पवित्र जुलूस में सिस्टीन चैपल की ओर बढ़ेंगे, जहां नए संत पापा का चुनाव करने के लिए कॉन्क्लेव शुरू होगा। सिस्टीन चैपल के अंदर जुलूस के अंत में प्रत्येक कार्डिनल निर्वाचक प्रेरितिक संविधान के पैराग्राफ 53 के अनुसार शपथ लेता है। इस शपथ के माध्यम से वे यदि चुने जाते हैं तो विश्वव्यापी कलीसिया के चरवाहे के रूप में परमाध्यक्षीय पद को ईमानदारी से निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे रोमन परमाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित हर चीज के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने और चुनाव में बाहरी हस्तक्षेप के किसी भी प्रयास का समर्थन करने से परहेज करने की भी प्रतिज्ञा करते हैं। उधर इटालियन कार्डिनल जोवानी अंजेलो बेच्चू ने मंगलवार 29 अप्रैल को एक बयान जारी कर घोषणा की कि वह 7 मई से शुरू होने वाले कॉन्क्लेव में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की इच्छा का पालन करने का फैसला किया है, हालांकि उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। बयान में कहा गया है कि कलीसिया की भलाई को ध्यान में रखते हुए, जिसकी मैंने निष्ठा और प्रेम के साथ सेवा की है और करता रहूंगा, तथा सम्मेलन की शांति और सामंजस्य में योगदान देने के लिए मैंने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की इच्छा का पालन करने का निर्णय लिया है, जैसा कि मैंने हमेशा किया है, और मैं सम्मेलन में प्रवेश नहीं करूंगा और मुझे अपनी बेगुनाही पर पूरा विश्वास है। और सोमवार शाम को संत पेत्रुस महागिरजा घर में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के 9 दिनों के शोक के 3वें मिसा समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कार्डिनल बाल्दासारे रेना ने की। रोम के धर्म प्रांत के कार्डिनल विकर जनरल ने अपने प्रवचन की शुरुआत रोम के लोगों के साझा दुख को स्वीकार करते हुए की, जो दुनिया भर के सभी विश्वासियों के साथ न केवल अपने धर्माध्यक्ष के निधन पर शोक मना रहे हैं, बल्कि चरवाहे के बिना भेड़ की तरह महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह रूपक इन दिनों की भावनाओं का सारांश है, लेकिन मानवता की वर्तमान स्थिति को भी दर्शाता है, जो संकटों से भरी दुनिया में परित्यक्त और नेतृत्वहीन लगती है, ठीक उसी तरह जैसे भीड़ जिसने येसु को करुणा के लिए प्रेरित किया था। कार्डिनल रेना ने याद किया कि कैसे प्रेरितों ने अपने अथक परिश्रम और थकावट के बावजूद टूटी हुई दुनिया में आशा और ठोस प्रेम के संकेत लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह प्रेरितिक भावना संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक कार्यों में प्रतिध्वनित होती है, एक समर्पण जो सेवा में खुद को समाप्त कर देता है, जो पास्का रविवार को आशीर्वाद के अंतिम प्रवाह में परिणत होता है। अकाल के समय में बुआई असाधारण आस्था की मांग करती है, फिर भी कार्डिनल रेना ने चेतावनी दी कि वर्तमान समय पुरानी यादों या भय से प्रेरित पीछे हटने का समय नहीं है, बल्कि कलीसिया को मौलिक निष्ठा के लिए बुलाया जाता है। अतीत की निश्चितताओं या सांसारिक गठबंधनों से चिपके रहने के प्रलोभन से आगे झुके बिना एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी को गले लगाने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सच्ची निष्ठा का अर्थ है संत पापा फ्रांसिस द्वारा शुरू किए गए सुधारों की भावना को समझना और उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ाना, ऐसे नेतृत्व की तलाश करना जो भय और सांसारिक समझौते का विरोध करता हो और सुसमाचार की करुणा और एकता में निहित हो। खुशी, उम्मीद, आंसू, मुस्कुराहट, ये कुछ भावनाएं थी जो रोम में अगुस्टीनियम कांग्रेस सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदर्शित हुई, जो विकलांग लोगों और उनकी देखभाल करने वालों के साथ साथ कई चैरिटी के प्रमुखों से खचाखच भरा हुआ था। वे इतालवी धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा आयोजित हम आशा के तीर्थ यात्री नामक एक सम्मेलन को जीवंत करने के लिए एक साथ आए थे, जिसने आधिकारिक तौर पर विकलांग व्यक्तियों की जयंती का उद्घाटन किया। पैरालिंपिक एथलीट बेवे वियो और ओनी तापिया ने दर्शकों के साथ अपनी कहानियां साझा की। उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति का नए जोश और बिना किसी डर के सामना करने के लिए प्रेरित किया, यह जानते हुए कि अंत में विकलांगता पूरे समाज के लिए एक संपत्ति है। इससे पहले सम्मेलन के काम की शुरुआत करते हुए इतालवी धर्माध्यक्षों के लिए विकलांगता आउटरीच की प्रमुख सिस्टर वेरोनिका दोनातेल्लो ने याद किया कि कैसे यह जयंती संत पापा फ्रांसिस की मुलाकात की विरासत से प्रेरित थी। उन्होंने कहा, हर भाषा और राष्ट्र के पुरुषों और महिलाओं को ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक साथ आते देखना कितना सुंदर है। हाल के वर्षों में हमने अपनेपन की संस्कृति पर बहुत काम किया, विकलांग व्यक्तियों को उनकी सीमाओं से परे देखना। एक वीडियो संदेश में इतालवी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव धर्माध्यक्ष जुसेप्पे बटूरी ने समझाया कि जयंती स्वयं हमें ईश्वर के प्रेम की ओर एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती है। अपने स्वागत भाषण में वाटिकन संचार विभाग के सचिव मोनसिन्योर लुचियो रुइस ने इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण विभाग समावेशी समुदायों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि कलीसिया की सच्ची संपत्ति विश्वास, आशा और दान के बंधन में निहित है। सम्मेलन में सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें दो गोलमेज बैठकें हुई, जिनमें से एक का संचालन संचार विभाग के उप संपादकीय निदेशक अलेसांद्रो जिसोती ने किया और दूसरी विकलांगता के संबंध में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नैतिकता की चुनौती पर केंद्रित थी, जिसका संचालन पत्रकार पावला सेवेरिनी मेलोग्रानी ने किया और इसका समापन सन पेत्रुस महागिरजा घर के पवित्र द्वार की एक भावपूर्ण तीर्थ यात्रा के साथ हुआ। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।